एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं एक ऐसी किताब में जो आज के दौर में आप कह सकते हैं बहुत अहमियत रखती है।
बिल्कुल, हम बात करें इतिहासकार राणा मित्तर की किताब मॉडर्न चाइना अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
जी,
चीन आज दुनिया में इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन उसे समझना कई बार मतलब मुश्किल लगता है ना।
हाँ, और ये किताब इसी मुश्किल को थोड़ा आसान करने की कोशिश करती है। ये सिर्फ तारीखों और घटनाओं का क्या कहते हैं लेखा जोखा नहीं है।
नहीं, ये समझने में मदद करती है कि चीन कैसे वो जो पुराना साम्राज्य था उससे आज के इस ताकतवर लेकिन हाँ कई विरोधाभासों से भरे देश में बदला।
ये किताब हमें चीन के आधुनिक बनने के उस लंबे उतार चढ़ाव भरे सफर की कहानी सुनाती है।
और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि चीन के फैसलों का असर वो तो पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो या फिर पर्यावरण भी।
सही बात है। तो ये किताब हमें उस सोच की जड़ों तक ले जाती है जो आज के चीन को चला रही है, कह सकते हैं।
हाँ,
चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें। राणा मित्तर वो कोई आम इतिहासकार नहीं है।
सही कहा, वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आधुनिक चीन के इतिहास और राजनीति के प्रोफेसर हैं। और दिलचस्प बात यह है कि वे पश्चिमी दुनिया के उन गिने चुने विशेषज्ञों में से हैं जो चीनी भाषा के स्रोतों का मतलब गहराई से अध्ययन करते हैं।
हाँ, तो उनका नजरिया सिर्फ बाहरी नहीं है, अंदरूनी समझ भी है उसमें।
बिल्कुल, उनकी खासियत है 20वीं सदी का चीनी इतिहास, खासकर वो उथल पुथल भरा दौर 1912 से 1949 वाला और चीन जापान युद्ध।
हाँ, मैंने सुना है उनकी दूसरी किताबें जैसे ए बिटर रिवोल्यूशन या वो फॉरगॉटन एलाय जो चीन के दूसरे विश्व युद्ध के अनुभव पर है, उसने तो पश्चिम में चीन को देखने का नजरिया ही बदल दिया था।
हाँ बिल्कुल, और उनकी सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती है वो ये है कि वे सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, वो क्यों हुआ इस पर ज्यादा जोर देते हैं।
अच्छा, मतलब विश्लेषण पर ध्यान है।
हाँ, वो किसी का पक्ष नहीं लेते और वे ये मानते हैं कि आधुनिक चीन सिर्फ बाहरी ताकतों की वजह से नहीं बना बल्कि चीनी लोगों के अपने फैसलों और संघर्षों का नतीजा है। उनकी लेखनी में एक तरह की सहानुभूति भी है जो चीन के मुश्किल और अक्सर क्रूर बदलावों को समझने में मदद करती है।
तो चलो अब किताब पर आते हैं। ये किताब आखिर है किस बारे में? मतलब ऊपर ऊपर से देखें तो ये 19वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक के चीन की कहानी है।
हाँ, किंग राजवंश का पतन, फिर क्रांतियां, युद्ध और फिर आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना।
लेकिन जैसा आपने कहा, ये सीधी कहानी नहीं है। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है वो क्रांति की निरंतरता वाला।
हाँ बिल्कुल, मित्र कहते हैं कि चीन का आधुनिक इतिहास कोई एक घटना नहीं बल्कि क्रांति की एक लगातार चलने वाली और हाँ अक्सर हिंसक और उथल पुथल भरी प्रक्रिया है। और यहाँ क्रांति का मतलब सिर्फ 1911 या 1949 का राजनीतिक बदलाव नहीं है।
मतलब ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं थी?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये एक ज्यादा गहरा संघर्ष था कि भाई आधुनिक दुनिया में चीनी होने का मतलब क्या है। अपनी हजारों साल पुरानी शाही पहचान जब वो ढह गई तो एक नई पहचान कैसे गढ़ी जाए, ये राजनीति, समाज, संस्कृति सब कुछ बदलने की एक लगातार कोशिश थी।
अच्छा, तो ये किताब बताती है कि कैसे चीन उस पुराने ढर्रे से निकलकर आज का ये शक्तिशाली राष्ट्र राज्य बना।
और इसका जवाब
वो अलग अलग विचारों के टकराव में है।
हाँ, जो चीन के भविष्य को लेकर एक सदी से ज्यादा समय से आप कह सकती हैं लड़ रहे थे। ये विचार बुनियादी सवालों से जुड़े थे, शासन कैसा हो, व्यक्ति की क्या भूमिका हो, परंपरा और आधुनिकता में तालमेल कैसे बैठे, दुनिया में चीन का मुकाम क्या हो।
तो आज का चीन अपनी वो खास तरह की राजनीति, तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था और वो मुखर राष्ट्रवाद, वो सब इसी लंबी, जटिल और अक्सर दर्दनाक क्रांतिकारी प्रक्रिया का नतीजा है।
बिल्कुल, ये किताब हमें इसी पूरी कहानी को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है, एक नजरिया देती है।
चलिए अब किताब के अंदर थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहले अध्याय में ही मित्र एक बड़ा सवाल उठाते हैं, आधुनिक चीन आखिर है क्या?
हाँ, और उनका तर्क है कि चीन के लिए आधुनिकता सिर्फ पश्चिम की नकल करना नहीं था, ये अपने पुराने साम्राज्य के ढहने पर एक आप कह सकती हैं दर्दनाक प्रतिक्रिया थी।
अच्छा, यहीं से वो निरंतर क्रांति का आइडिया आता है, धन, शक्ति और एक नई राष्ट्रीय पहचान की तलाश।
बिल्कुल, और दूसरे अध्याय में वो किंग राजवंश 1644 से 1912 के पतन की चीरफाड़ करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पश्चिमी ताकतों ने ही किंग को खत्म किया।
हाँ, यही सुना है ज्यादातर।
लेकिन मित्र कहते हैं कि अंदरूनी समस्याएं शायद ज्यादा बड़ी थीं। एक बेहद कठोर नौकरशाही जो बदलाव के लिए तैयार नहीं थी, जनसंख्या का भारी दबाव, भ्रष्टाचार।
तो अफीम युद्ध जैसी बाहरी घटनाओं ने इन कमजोरियों को सिर्फ उजागर कर दिया।
हाँ बिल्कुल। और वो टाइपिंग विद्रोह 1850-64 का जिक्र करते हैं जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। ये दिखाता है कि 1911 की औपचारिक क्रांति से बहुत पहले ही राजवंश की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी, अंदर से वो खोखला हो रहा था।
सही बात है। अब किंग के पतन के बाद क्या हुआ? अराजकता। तीसरा अध्याय उसी दौर को देखता है जिसे सरदार युग यानी वॉरलॉर्ड एरा करीब 1916-1928 कहते हैं।
हाँ, जब चीन असल में टुकड़ों में बट गया था। इसी अफरा तफरी के माहौल में दो बड़ी ताकतें उभरी। एक थी कुओमिंतांग यानी नेशनलिस्ट पार्टी,
हाँ सन यात सेन वाली
जी, और दूसरी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी, जिसकी स्थापना 1921 में हुई।
और यहीं पर मित्र 1919 के मई फोर्थ मूवमेंट का महत्व पर जोर देते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बौद्धिक और सांस्कृतिक भूचाल था। इसने पारंपरिक कन्फ्यूशियस सोच को चुनौती दी और विज्ञान, लोकतंत्र, समाजवाद जैसे नए विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। इसने चीन के भविष्य की वैचारिक लड़ाई की, कह सकते हैं, नींव रखी।
इसके बाद आता है चौथा अध्याय, नैनजिंग दशक 1927-1937। इस दौर में चियांग का इशेक के नेतृत्व में केएमटी ने नैनजिंग में एक राष्ट्रीय सरकार बनाने की कोशिश की।
हाँ मित्र, इसे एक महत्वाकांक्षी लेकिन अधूरा प्रयास बताते हैं। शहरों में तो कुछ आधुनिकता आई, पर वो विशाल ग्रामीण चीन तक अपनी पकड़ नहीं बना पाए।
और ऊपर से भ्रष्टाचार और बढ़ती तानाशाही भी थी।
बिल्कुल। और इसी दौरान सीसीपी, जिसे केएमटी ने शहरों से खदेड़ दिया था, वो माओ ज़ेडोंग जैसे नेताओं के साथ गांव में चली गई। वहां उन्होंने किसानों को साथ लेकर क्रांति की एक बिल्कुल नई रणनीति बनाई। वो एक तरह से देश के अंदर ही अपना अलग आधार तैयार कर रहे थे।
फिर आता है वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया, युद्ध। पांचवा अध्याय युद्ध और क्रांति 1937-1949 पर है। मित्र का तर्क है कि दूसरा चीन जापान युद्ध 1937-1945 वो घटना थी जिसने तय कर दिया कि चीन की क्रांति का नतीजा क्या होगा।
हाँ, और ये युद्ध चीन के लिए भयानक तबाही लेकर आया। मित्र दिखाते हैं कि कैसे इस युद्ध ने केएमटी सरकार की कमर तोड़ दी।
अच्छा, कैसे?
चियांग काईशेक की सेना ने जापानियों से ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां लड़ी जिससे उनके संसाधन खत्म हो गए और भ्रष्टाचार और नाकामी ने जनता के बीच उनकी छवि खराब कर दी।
और कम्युनिस्टों ने क्या किया इस दौरान?
उन्होंने स्थिति का, आप कह सकती हैं, फायदा उठाया। गरिल्ला युद्ध लड़ा, गांव में अपना नेटवर्क फैलाया और खुद को जापानियों से लड़ने वाले सच्चे देशभक्त के तौर पर पेश किया।
तो जब 1945 में जापान हारा,
हाँ, तो थकी हारी और बदनाम केएमटी सीसीपी की अनुशासित और प्रेरित सेना का सामना नहीं कर सकी। नतीजा 1949 में कम्युनिस्टों की जीत और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना। युद्ध ने वाकई क्रांति का रास्ता बना दिया था।
इसके बाद शुरू हुआ माओ का दौर। छठा अध्याय, माओ का चीन 1949-1976 हमें उस युग में ले जाता है, तानाशाही नियंत्रण और बड़े पैमाने पर सामाजिक प्रयोगों का दौर।
जी, इसमें मित्र ग्रेट लीप फॉरवर्ड का विश्लेषण करते हैं। ये चीन को रातों रात औद्योगिक ताकत बनाने का एक जुनून भरा प्रयास था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित अकाल, करोड़ों मौतें।
भयानक था वो तो। और फिर सांस्कृतिक क्रांति।
हाँ, वो माओ का अपनी पार्टी और समाज से अपने विरोधियों और हर तरह की पारंपरिक या पूंजीवादी सोच को मिटाने का एक और भयानक प्रयास। मित्र इन नीतियों की भारी मानवीय कीमत पर जोर देते हैं। लाखों और मौतें, संस्कृति का नाश, टूटे हुए परिवार।
तो जब माओ की मौत हुई, चीन की हालत क्या थी?
राजनीतिक रूप से कट्टर था, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा और दुनिया से कटा हुआ।
माओ के बाद क्या हुआ? सातवां अध्याय डेंग का चीन और उसके बाद का है। माओ की मौत के बाद डेंग शाओपिंग ने 1988 में कमान संभाली।
हाँ, वो खुद क्रांति के पुराने नेता थे और माओ के अभियानों में झेल चुके थे। उन्होंने सुधार और खुलेपन की नीति शुरू की।
अच्छा, क्या था इसमें?
उन्होंने माओं की सामूहिक खेती खत्म की, बाजार को खोला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, विदेशी निवेश को बुलाया। नतीजा, जबरदस्त आर्थिक विकास जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला।
लेकिन मित्र, यहाँ एक जरूरी बात कहते हैं, आर्थिक सुधार तो हुए पर राजनीतिक सुधार कभी नहीं हुए।
बिल्कुल।
और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 1989 का तियानबिन स्क्वायर का प्रदर्शन और उसका उक्रूर दमन। उसने क्या साफ कर दिया?
उसने साफ कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी अपनी राजनीतिक सत्ता को कोई चुनौती बर्दाश्त नहीं करेगी। एक तरह का अलिखित समझौता बन गया, पार्टी आर्थिक तरक्की देगी, बदले में लोग राजनीतिक मामलों में चुप रहेंगे।
और फिर आता है आठवां और आखिरी अध्याय, जो 21वीं सदी के चीन को देखता है। चीन एक बड़ी वैश्विक ताकत बन चुका है। विश्व व्यापार संगठन WTO में शामिल होना, 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स।
हाँ, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां भी हैं। शहरों और गांवों के बीच बढ़ती खाई, पर्यावरण का संकट और शी जिनपिंग के नेतृत्व में बढ़ती तानाशाही।
तो ये अध्याय हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चीन के क्रांतिकारी अतीत की कौन सी विरासतें आज भी जिंदा हैं।
जी, एक स्थिर और सही मायने में वैध राजनीतिक व्यवस्था की तलाश, वो अब भी जारी है। सत्तावादी राज्य की ताकत और 1.4 अरब लोगों की उम्मीदों के बीच का तनाव, वो चीन की आधुनिक कहानी का अनसुलझा सवाल बना हुआ है।
तो इस पूरी कहानी से कुछ मोटी बातें क्या निकलती हैं? पहली तो वही, क्रांति की निरंतरता। ये कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक सदी लंबी उथल पुथल थी जिसका असर आज भी दिखता है।
हाँ, मतलब हर दौर पिछले दौर की समस्याओं का जवाब देने की कोशिश थी और हर जवाब नई समस्याएं लेकर आया।
बिल्कुल।
दूसरी अहम बात है आधुनिक चीनी पहचान की खोज। आधुनिक होने का मतलब क्या है? चीनी होने का मतलब क्या है? क्या पश्चिम की नकल करें, या अपनी परंपरा को पूरी तरह छोड़ दें, या कोई बीच का रास्ता निकालें?
ये कश्मकश आज भी चीन में जारी है।
हाँ, जैसे चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद जैसी बातों में, ये दिखाता है कि पहचान का सवाल कितना पेचीदा है।
तीसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी, वो है एक मजबूत एकीकृत राज्य बनाने पर जोर। साम्राज्य के टूटने और सरदारों के दौर की अराजकता, जिसे चीनी भाषा में लुआन कहते हैं, उसका डर बहुत गहरा बैठ गया।
लुआन का डर।
हाँ, इसी डर ने चियांग काईशेक से लेकर माओ और शी जिनपिंग तक सब में एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की इच्छा पैदा की, चाहे उसकी कीमत व्यक्तिगत आजादी ही क्यों ना चुकानी पड़े। एकता की ये चाह बहुत ताकतवर रही है।
हाँ, और चौथा है शहर और गांव का बंटवारा। चीन का आधुनिक इतिहास इस गहरी खाई से बहुत प्रभावित रहा है। KMT शहरों की पार्टी बनकर रह गई, जबकि CCP ने गांवों में किसानों को साथ लेकर बाजी मार ली।
ये तनाव आज भी है।
हाँ, ये आज भी बड़ी आर्थिक असमानता के रूप में मौजूद है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। जैसे हम अपने यहाँ भी शहर और गांव के बीच का फर्क देखते हैं, चीन में यह शायद और भी ज्यादा गहरा और ऐतिहासिक रहा है।
और पांचवां, अंदरूनी कमजोरी और भारी दबाव का मेल। मित्र कहते हैं कि चीन को समझने के लिए दोनों को देखना जरूरी है।
हाँ, मतलब किंग राजवंश अंदर से कमजोर था, इसलिए बाहरी ताकतों का शिकार बना, और बाहरी हमलों ने उन सरकारों को और कमजोर किया जो विदेशियों के सामने झुकी,
और इसी सबसे वो जबरदस्त राष्ट्रवाद पैदा हुआ जो आज भी चीन में एक बड़ी ताकत है।
बिल्कुल। किताब में कई ऐसे विचार हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर कुछ खास विचारों को अपने शब्दों में कहें तो पहला विचार जिसे हम कह सकते हैं, 1911 में किंग साम्राज्य का पतन सिर्फ एक राजवंश का अंत नहीं था, बल्कि 2000 साल पुराने राजनीतिक और सांस्कृतिक ब्रह्मांड का ढहना था। उसके बाद का पूरा आधुनिक चीनी इतिहास उस खालीपन को भरने की एक हिंसक और बेचैन कोशिश है।
ये बात वाकई सोचने वाली है। ये सिर्फ सरकार बदलने का मामला नहीं था, बल्कि विश्वास, पहचान, सब कुछ दांव पर लग गया था। इसी वजह से शायद बाद के सारे संघर्ष इतनी ज्यादा विचारधारा से जुड़े और तीखे रहे होंगे।
दूसरा विचार, दूसरा चीन जापान युद्ध 1937 से 1945, वो भट्टी थी जिसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना गढ़ा गया। इसने नेशनलिस्टों को तबाह कर दिया और कम्युनिस्टों की जीत का रास्ता साफ कर दिया।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। मित्र इस युद्ध को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसे अक्सर पश्चिमी इतिहास में शायद उतना महत्व नहीं मिलता।
जी, उनका कहना है कि सीसीपी सिर्फ इसलिए नहीं जीती कि उनके विचार बेहतर थे, बल्कि युद्ध ने उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी केएमटी को इतना कमजोर कर दिया कि कम्युनिस्टों को गांव में जमने और देशभक्ति का नारा बुलंद करने का मौका मिल गया।
ये तो जबरदस्त मोड़ था इतिहास में।
तीसरा विचार, माओ ज़ेडोंग ने चीन के अतीत को मिटाकर नया समाजवादी इंसान बनाने की कोशिश की। डेंग शियापिंग ने समाजवाद को किनारे रखकर चीन को अमीर बनाने पर ध्यान लगाया।
ये माओ के वो आदर्शवाद, भले ही वो कितना भी कट्टर क्यों ना हो, और डेंग के यथार्थवाद के बीच का फर्क दिखाता है। इससे पता चलता है कि 1978 के बाद चीन ने अपनी प्राथमिकताएं कैसे बदली, विचारधारा से हटकर सीधे आर्थिक नतीजों पर जोर।
हाँ।
और चौथा विचार, 1989 के तियानमेन चौक दमन के बाद चीनी लोगों के साथ सौदा साफ था। आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप पार्टी की सत्ता को चुनौती नहीं दे सकते। आज भी चीन का बुनियादी सामाजिक समझौता यही है।
ये आज के चीन की राजनीतिक हकीकत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। पार्टी अब क्रांतिकारी नारों पर नहीं टिकी है।
नहीं, अब वो आर्थिक तरक्की और राष्ट्रीय गौरव देने की अपनी क्षमता पर टिकी है। बदले में जनता से राजनीतिक चुप्पी की उम्मीद की जाती है।
अच्छा, तो इस सारे इतिहास को जानने का आज की दुनिया में क्या मतलब है? पहला तो व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए जो चीन के साथ बिजनेस करते हैं, उनके लिए क्या सबक है?
उनके लिए समझना जरूरी है कि वहां सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा सबसे ऊपर है। राजनीतिक सोच अक्सर आर्थिक फैसलों पर भारी पड़ जाती है। वो जो लुआन यानी अराजकता का डर है ना, उसका मतलब है कि सरकार स्थिरता बनाए रखने के लिए कभी भी आर्थिक तर्क को दरकिनार कर सकती है। ये जानना जरूरी है।
दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति के लिहाज से ये किताब चीनी राष्ट्रवाद की गहरी जड़ों को समझाती है। वो अपमान की सदी वाली बात।
हाँ, वो सिर्फ इतिहास का पन्ना नहीं है, वो उनकी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। सरकार आज भी उसका इस्तेमाल अपनी कार्रवाइयों को सही ठहराने और दुनिया में सम्मान की मांग करने के लिए करती है।
तो चीन की आक्रामक विदेश नीति या ताइवान और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर उसकी संवेदनशीलता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है।
बिल्कुल।
तीसरा, मौजूदा घटनाओं को समझने के लिए, जब हम हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों के दमन या शिनजियांग में उइगरों के साथ व्यवहार या फिर शी जिनपिंग के दौर में बढ़ते नियंत्रण के बारे में सुनते हैं।
हाँ, तो ये किताब हमें बताती है कि ये सब कहाँ से आ रहा है। ये चीजें सीसीपी के उसी पुराने डर, देश के टूटने का डर, उलुवान, एक जैसी राष्ट्रीय पहचान थोपने की जिद और इस विश्वास से जुड़ी हैं कि सिर्फ पार्टी का पूरा नियंत्रण ही चीन को अतीत की अराजकता में लौटने से रोक सकता है। और हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर भी ये किताब चीन को सिर्फ प्राचीन सभ्यता या कम्युनिस्ट तानाशाही जैसे क्या कहते हैं स्टीरियोटाइप्स में बांटने से रोकती है।
सही बात है।
ये दिखाती है कि चीन एक बहुत जटिल देश है जिसने गहरे सदमे झेले हैं, गजब का लचीलापन दिखाया है और जिसके अंदर कई अनसुलझे सवाल हैं। ये हमें चीन के लोगों और उनकी सरकार के साथ उनके रिश्ते को ज्यादा गहराई और शायद थोड़ी हमदर्दी से समझने में मदद करती है।
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि चीन का आज उसके क्रांतिकारी अतीत से कितना ज्यादा जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय एकता की वो तलाश, सरकार और व्यक्ति के बीच का वो तनाव, आधुनिक पहचान की वो खोज, ये सारे संघर्ष आज भी चीन की राजनीति और समाज की धुरी बने हुए हैं। इतिहास वाकई में कभी गुजरता नहीं, वो वर्तमान को लगातार गढ़ता रहता है ना।
बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि कैसे वो अराजकता का डर, लुआन, लगातार चीनी शासकों के फैसलों पर हावी रहा है, चाहे वो राष्ट्रवादी रहे हों या कम्युनिस्ट। ये दिखाता है कि स्थिरता की चाह कितनी गहरी हो सकती है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और किताब हमें इस बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है, क्या एक तरफ तेज रफ्तार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ एक सख्त तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था का ये विरोधाभास, क्या ये लंबे समय तक चल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य ही देगा।
और उस जवाब का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।